ये श्लोक 42 है, छठे अध्याय का। अथवा योगिनामेव
अथवा योगिनामेव
कुले भवति धीमतां,
कुले भवति धीमतां
एतद्धि दुर्लभतरम्,
एतद्धि दुर्लभतरम्
लोके जन्मा यदि दृशम्,
लोके जन्मा यदि दृशम्।
बहुत सुंदर श्लोक है। अथवा, अथवा मतलब या फिर, योगी नाम एव, योगियों के ही कुले भवति धीमताम, परम बुद्धिमानों के, योगियों के कुल में वह जन्म लेता है। भवति मतलब होता है। एतद् हि दुर्लभतरम्, निश्चित ही यह इस प्रकार का जन्म बहुत दुर्लभतर है। दुर्लभ और दुर्लभतर, दुर्लभ मतलब जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो, और दुर्लभतर मतलब उससे भी और कठिन। लोके जन्म यदि दृशम, यदि इदृशम, इदृशम इस प्रकार का इस लोक में जन्म बहुत दुर्लभ है। अब एक विनोद की बात है, बात यह है कि क्या केवल ब्रह्मचारी और सन्यासी ही योगी होते हैं? नहीं, क्योंकि उनके यहां तो जन्म हो नहीं सकता है किसी व्यक्ति का, है कि नहीं? बोल रहे हैं योगियों का जन्म, योगियों के यहां जन्म लेते हैं, तो अर्थात भगवान श्री कृष्ण के भक्त, आचार्य परंपरा में कहीं पे भी, किसी भी भक्त के घर में जन्म लेना, तो कभी कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो गृहस्थ है वो बस भोगी ही है, ऐसा नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हैं पूर्ण रूप से, तो वह क्या है, योगी है। और ऐसे योगियों का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, अगर वह सही नियम पालन करते हैं और उनके घर में कोई संतान उत्पत्ति होती है, तो उस संतान को कृष्ण भावना भावित बनाना, ये सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है माता पिता का। और ये भगवान भगवद्गीता में इस बात की, इस श्लोक से हमें देखना चाहिए कि वह जो बालक या बालिका जन्म ली है, वह भी कोई सामान्य जीव नहीं है, उसने भी पहले कोई भक्ति की होगी, इसलिए ऐसे परिवेश में जन्म ले रहा है कि बचपन से ही उसे प्रसाद ग्रहण करने को मिल रहा है, या माँ के गर्भ में भी माँ जप कर रही है हरे कृष्णा हरे कृष्णा, माँ के गर्भ में भी अगर बच्चा है तभी वो हरे कृष्णा सुन रहा है, तो इसलिए वह जीव भी कोई सामान्य जीव नहीं है। जैसे हमारे सनक सनातन प्रभु का छोटा लड़का बता रहे थे कि 12 साल के जब वो था तो वीडियो गेम खेल रहा था, और अकस्मात उसने बोला मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूं, मुझे आप मायापुर गुरुकुल भेज दीजिए। तो समझ लेना चाहिए कि ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है, ठीक है। वैसे तो देखिए भक्ति इतनी बढ़िया है कि एक भक्त बता रहे थे कि उनका जो जब छोटे थे मतलब पैदा हुए, तो उनका अन्न प्राशन नहीं हुआ, उनका अंडा प्राशन हुआ। और ऐसा व्यक्ति भी बहुत अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान के संपर्क प्राप्त करके भक्ति कर सकता है। तो अंडा प्राशन करने वालों का भी इतना उद्धार हो सकता है, तो जो महाप्रसाद प्राशन करने वाले हैं जिनका, तो उनका क्या क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है। कठिनाई बस ये होती है कि भक्तों के पैदा होने के बाद व्यक्ति समझ नहीं पाता है कभी कभी ऐसा कि उसे कितना बड़ा जन्म, कितना बड़ा मौका प्राप्त हुआ। ये बात आप 11वें स्कंद में पढ़ेंगे कि पूरे विश्व से द्रोह करने वाला व्यक्ति भी भागवत धर्म का अगर आश्रय लेता है तो वह शुद्ध हो जाता है। क्या बोला मैंने, पूरे विश्व से द्रोह करने वाला व्यक्ति, बहुत खराब व्यक्ति भी क्यों ना हो, वह भी भक्ति करता है तो शुद्ध हो जाता है। ऐसी बातें बोली जा रही है तो हम पूरे विश्व से द्रोह नहीं कर सकते ना, करना चाहें भी तो नहीं कर सकते, हम हो सकता अपने पड़ोसी से द्रोह करते हो, तो हमारे लिए होप है। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो, यह अथवा का मतलब है पिछले श्लोक में क्या सीखा था, थोड़ा अभ्यास किया, अब यहाँ के देख रहे हैं बहुत लंबे समय तक अभ्यास किया और असफल रहे, अर्थात या तो उसकी मृत्यु हो जाए और या फिर उसका पतन हो जाए किसी तरह से, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि वह जरूरी नहीं है कि स्वर्ग जाए, जरूरी नहीं है कि वो स्वर्ग जाए, तुरंत जन्म लेकर के अपनी भक्ति को कंटिन्यू करे। जैसे हम लोग सो करके उठते हैं, कल सुबह सो करके उठेंगे कि ना, उठेंगे तो बस भक्ति चालू, मंगल आरती चालू, तो यह भी संभावना है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक वर्णन करता है उस योगी का जो बहुत लंबे समय के अभ्यास के बाद गिरता है। वह योग के शिक्षकों के घर में जन्म लेता है, अर्थात उस परिवार में जन्म लेता है जो योग का अभ्यास करते हैं। भगवान, इस समझ में आ रहा है ना? ठीक है। यानी कि देखिए, किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया या फिर किसी पैसे वाले के यहाँ जन्म लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके भक्ति का प्रवेश मिलेगा। वह पुण्यात्मा हो सकते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि वह पूरी तरह से शुद्ध भक्त ही होंगे। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे देखने से लग रहा है मैं कुछ संदिग्ध बोल रहा हूं। हाँ ना, कुछ तो बोलिए भाई। किसी ब्राह्मण के अगर जन्म लिया, ऐसा नहीं है कि वो इस्कॉन का हरे कृष्ण का डिवोटी होगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ब्राह्मण परिवार में हैं, लेकिन यह नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है। तो स्वाभाविक रूप से कल्चर रहता है, वो पाप नहीं, पापों में प्रवृत्त नहीं रहते, मांस वास नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह भगवान के भक्त ही हों। आज हमें भक्त के घर में प्रसाद पा रहे थे, वही बता रहे थे कि हमने प्याज लहसुन कभी नहीं खाया। स्वाभाविक से प्याज लहसुन नहीं खाया तो मुर्गा चबाने की तो बात ही नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से पुण्यात्मा है, लेकिन यह भी नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है ना प्रभु जी? हाँ, तो ये तो बोल रहा हूं कि मैं बोला पिछले श्लोक में, जो पिछले श्लोक में बोला गया है, जो योग का अभ्यास करके स्वर्ग गया उसके बाद वापस गिरा, तो वह जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो या वो एक धनवान के यहाँ पैदा हो तो वह धनवान या ब्राह्मण भगवान का शुद्ध भक्त हो। कुछ कुछ भक्ति कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो शुद्ध भक्त हो। ये समझ आ रहा है? लेकिन यहां बोल रहे हैं कि सीधे जो लंबे समय तक योग अभ्यास किया है उसको अधिक कृपा प्राप्त होगी। वह टाइम, बेसिकली टाइम वेस्ट नहीं करेगा। स्वर्ग इत्यादि जाना केवल टाइम वेस्ट है कि नहीं? आप स्वर्ग चले गए मान लीजिए, तो 10,000 साल बीत जाएंगे और महाप्रभु की कृपा समाप्त हो जाएगी। उससे तो अच्छा है कि पूर्ण नहीं हुए तो अगले जन्म फिर से लीजिए, फिर हरे कृष्णा चालू कीजिए। इस पे विनोद की बात ये थी, विनोद भी है और इंटेंस बात भी है। एक बार हमारे कदम कानन महाराज को गुरुकुल में जब प्रेसिडेंट थे तो उनको एक गोली मार दी थी किसी ने। तो जो उनको गोली मार दी गई तो उनको गोली लगी हुई थी और महाराज मजाक में कहते हैं, मैं गुरुकुल में देख रहा था और मैं सोचा था अब मैं अगला जन्म लूंगा तो गुरुकुल का बच्चा बनूंगा। कहते हैं मैं मरने वाला हूँ, वृंदावन की बात है, मैं मरने वाला हूँ और मैं देख रहा था कि गुरुकुल ठीक से चल रहा है कि नहीं। मतलब भाव आ रहा था गुरुकुल में अब जन्म लूंगा तो गुरुकुल में पढ़ाई करूंगा। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हो सकता है किसी का अकस्मात शरीर छूट जाए, वो पतन नहीं हो, शरीर छूट जाए, लंबे समय तक भक्ति कर रहा था तो वह भक्तों के घर में जन्म लेगा।
आपने भी बोला कि 10,000 साल तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा रहेगी, तब तक कर लो।
मतलब कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति योग में गिर गया, इस्कॉन से छोड़ दिया, अब स्वर्ग चला गया, तो 10,000 साल तक तो आराम से रह सकता है ये स्वर्ग में, तो नॉर्मल टेन्योर रहता है। उसके बाद अगर वापस यहाँ पे आया तो महाप्रभु की कृपा समाप्त हो जाएगी। महाप्रभु की कृपा केवल 10,000 साल तक है, सुने हैं ना आप? तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र का जो भी है ये सब केवल 10,000 साल तक रहेगा, ठीक है? उसके बाद भी रहेगा लेकिन बहुत कम। अभी भी देख लीजिए ना कितनी कठिनाई हो रही है, ठीक है? हम पढ़ते हैं आगे। भगवान फिर दोनों प्रकार के जन्मों का गुणगान करते हैं। ऐसे परिवार में जन्म जो योग के लिए अनुकूल हो, पिछले श्लोक के अनुसार, या योग के संस्कार के कारण ऐसे परिवार में जन्म जहां योग का अभ्यास होता है, यह इस संसार में सामान्य मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तो दुर्लभ तर कहा, क्यों कहा गया? पहला वाला दुर्लभ था जो पिछले श्लोक में था कि ऐसे ब्राह्मण क्या हुआ जो भाई आपको हरे कृष्णा करने से मना नहीं करे। एटलीस्ट तो कुछ पुण्यात्मा लोग होते हैं, बच्चा हरे कृष्णा कराने कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बात हो गई। और दूसरा क्या है, ऐसी जगह जहां पर योगाभ्यास चल ही रहा है, मंगल आरती हो ही रही है, जप हो ही रहा है, यह दुर्लभ तर है। पहला वाला क्या था? दुर्लभ। अब ये दुर्लभ तर, तारतम्यता समझते हैं, डिग्री ऑफ सुपरलेटिवनेस इज इंक्रीज्ड। यस, तो ये समझ में आ रहा है। तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? सुंदर माधव, यस।
यहाँ पे योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं।
ये बहुत सुंदर बात है, दो बातें अभी ध्यान दिए, परंपरा और प्रशिक्षण, परंपरा मतलब जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको प्रिजर्व किया जाता है, और प्रशिक्षण ट्रेनिंग, ये भी इंटरेस्टिंग है। ट्रेनिंग मतलब देखिए ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी बातें हम केवल सुनकर नहीं सीखते हैं, देख के सीख लेते हैं, है कि नहीं। तो जो पूर्ववर्ती भक्त हैं या जो हमारा समाज के अग्रगण्य लोग हैं वह वैसा कर रहे होते हैं तो उसको देख करके भी हम लोग सीखते हैं। बताना तो आवश्यक होता ही है लेकिन देख करके भी भक्त लोग सीखते हैं कि नहीं सीखते। तो यही बात है बोलने की, बचपन से वो देखता है कि जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं अपने पिता को देखता था वो घंटी बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को देखते तो अपनी भी रथ यात्रा इस प्रकार से चला रहे थे। तो ये स्वाभाविक रूप से भक्त बचपन से ही वह उस पर संस्कार बना रहता है। पढ़िएगा,
इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ
ऐसे सनक सनातन प्रभु बता रहे थे, साउथ इंडिया में जो सबसे खराब लड़का होता है उसको ब्राह्मण बनाते हैं। साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण परिवार हैं उसमें जो सबसे पढ़ाई में सबसे खराब होता है उसको ब्राह्मण बनाते हैं, और जो अच्छे लड़के हैं उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं। तो ये स्थिति उल्टा होना चाहिए था ना, ये स्थिति हो गई है कि विद्या का अपर्याप्त विद्या यानी ज्ञान ना होने के कारण, अप्रशिक्षण न होने के कारण। यहाँ पे भी आप देखो जो कर्मकांड भी ब्राह्मण कर रहे हैं वह पान क्यों चबा रहे हैं, क्योंकि उनका शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ। पढ़िए,
भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों के प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया, बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी भेंट हुई।
हाँ, तो अगर हम लोग भक्ति में पूरी तरह सफल नहीं भी हुए तो इस्कॉन में दोबारा जन्म लेंगे और इस्कॉन अगले जन्म हमारे अगले जन्म तक भी रहेगा, है ना। लेकिन लंबे समय तक भक्ति करते रहना चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए भक्ति कर रहा है और शरीर छूट गया, पतन नहीं हुआ लेकिन भक्ति में पूर्ण नहीं हो गया, तो भी इस प्रकार का जन्म प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस्कॉन में हम बने रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। एक श्लोक और या कुछ पूछना है इसमें, ये तो स्पष्ट है।